कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि संसार में बहुत लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या भी करते हैं, परंतु जिस यज्ञ का प्रयोजन केवल धर्म ही है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, धन आदि की प्राप्ति नहीं है, उस यज्ञ को कैसे किया जाए महाराज? पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, मनुष्य के सामने जब कोई उत्तम कर्म का भोग सामने आता है, उस समय में वो अपने को रोक पाए बड़ा मुश्किल है। केवल सत्संग करने वाला और भगवान का स्मरण करने वाला ही अपने को रोक सकता है। इसलिए यज्ञ आदि कर्म केवल भगवत प्रेम के लिए करना चाहिए, धर्म के लिए ही करना चाहिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं जो नारद जी ने कृपा करके मुझे कहा है। एक बार नारद जी ने कहा कि देखो भीष्म, विदर्भ के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। विदर्भ ये नागपुर वगैरह का जो क्षेत्र है, नागपुर अमरावती, ये विदर्भ का क्षेत्र है, माने भारतवर्ष का जो बीच का क्षेत्र है। तो वहां उस विदर्भ क्षेत्र के अंदर एक ऋषि रहते थे और वो ऋषि बड़े त्यागी ऋषि थे। गेहूं भी बीन बीन करके खाते थे, खेत में से बीन करके, और उनके त्याग का इतना प्रभाव पड़ा कि वहां कोई साग सब्जी भी नहीं होती थी, ऐसे ही कोई छोटे मोटे पत्ते जो तिक्त विरस ऐसे इसका साग कर लेते थे। उस तपस्वी के त्याग के प्रभाव से वहां के पत्तों में बड़ी मिठास, बड़ा मिठास हुआ, और जो अनाज के नाम पर वहां पर केवल उड़द मिलती थी, वो उड़द को खा करके और साग खा करके रहते थे। परंतु उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करूं। उनकी पत्नी ने कहा, पत्नी बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता, उस पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, आपको यज्ञ करने की जरूरत क्या है? आप त्याग वृत्ति से रहते हैं, ये कोई मामूली यज्ञ है? इस त्याग में जो आनंद है वो यज्ञ से आप क्या प्राप्त कर लोगे? यज्ञ में तो हिंसा भी होती है, उपवास से, व्रत से दुबली पतली वो पत्नी मोर पंखों को जोड़ जोड़ करके वो कपड़ा पहनती थी। इतनी गरीबी हालत के अंदर रहती थी, लेकिन कोई मन में इच्छा नहीं थी कि हमको ये मिले। अकामया कृतस्तत्र, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण ने कहा मैं तो यज्ञ करूंगा। कि क्यों करोगे? अरे क्यों कहेगी, बहुत चीजें मिलती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची चीजें मिलती हैं। तो महाराज आप तो ये सूखे पत्ते खा करके निर्वाह करते हो, क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो यज्ञ करेंगे। तो शुक्राचार्य जी के वंश में एक पणाद नाम का ऋषि था, उसको बनाया उन्होंने होता यज्ञ का आचार्य, और वहां उन्होंने यज्ञ करना चालू किया। अब देखिए उस यज्ञ के अंदर अब जो है हिंसा भी होती है, हिंसा वो करना चाहता तो नहीं था, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके स्त्री की बात रखने के लिए एक विचित्र घटना हुई। उसका एक साथी था मृग हिरण, हिरण आकर के कहने लगा कि ऋषिवर इस यज्ञ को आप विधि पूर्वक करो, मेरा बलिदान दे दो, मेरी हिंसा कर दो, आपका यज्ञ फलीभूत होगा, स्वर्ग मिलेगा। उसने कहा देख हिरण, तू इस जंगल में रहा, मेरे साथ रहा, मैं भी तेरे साथ रहा, मैं तेरा वध नहीं करना चाहता। तो फिर सावित्री प्रकट हुई। सावित्री ने कहा कि देखो इस मृग की आहुति दे दो, तुमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। तो सावित्री को भी हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि सावित्री माता, मैं तो हिरण को मार करके यज्ञ नहीं करूंगा। तब हिरण वहां से गया, 8 कदम गया होगा, हिरण वापिस बोला आकर के, साधु हिंसे माम सत्यम, देख तुम्हारे हाथ से ये समय निकल जाएगा, इधर देखो ब्राह्मण, आकाश के अंदर मेरा तुम यज्ञ के अंदर आहुति दे दो, और ये इतने बड़े बड़े देखो ये लोक है, और ये देखो अप्सराएं हैं, ये स्वर्ग है, ये तुमको मिलेगा। पश्य अप्सरसो दिव्य, अप्सराओं को देखो कितनी सुंदर अप्सराएं हैं, और ये गंधर्व हैं, तुमको विमानों में घुमाएंगे, इन विमानों में बैठ जाओ। तब वो उन अप्सराओं को देखा और देखा विमानों को देखा, और उनकी वेशभूषा और उनका शरीर देखा, उनके आभूषण देखे, तो अरे इनके बीच में रहेंगे तो बड़ी मौज मस्ती रहेगी। तो कहा अच्छा हम तुम्हारा बलिदान दे देंगे, हम तुम्हारे यज्ञ के अंदर आहुति दे देंगे। तो मृग वापिस आया, मृग वापिस आया, इधर फिर मन में विचार आया कि स्वर्ग का सुख भोगना है तो इसकी आहुति दे, और यदि स्वर्ग का सुख नहीं भोगना है और जो है अपने को यज्ञ ही करना है तो फिर मृग की आहुति मत दे। उस हिरण ने कहा कि यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं होती है, इसलिए आप मेरी हिंसा करके आहुति दे दीजिए। वो उहापोह में पड़ गया, उधर देखता है अप्सराओं को, चित्त उधर खींचता है, इधर देखता है हिरण को तो चित्त उधर खींचता है, क्या करूं? उसकी पत्नी ने कहा बस इतने त्याग से रहे और आपके अभी तक यही समझ में नहीं आया कि इसको बचाने का सबसे बड़ा यज्ञ है कि स्वर्ग को भोगने का यज्ञ है, आपको विचार नहीं आता? ये गंधर्व लोग अप्सरा लोग मनुष्य शरीर से नीचे हैं जो वहां हैं, आप मनुष्य शरीर में ब्राह्मण हैं और उच्च वृत्ति से रहते हो, कापोती वृत्ति से रहते हो, और हम लज्जा निवारण के लिए कपड़ा भी नहीं हमारे पास, मोर पंख का हमने कपड़ा पहन रखा है, इतने बड़े धर्म का त्याग करके आपका मित्र है ये मृग, इसके प्राण लेकर के आप वहां जाना चाहोगे? विचार नहीं आता आपको? और फिर इस यज्ञ में आप मुझे शामिल किए हो। ब्राह्मण के चित्त में विचार आया कि अरे ब्राह्मणी ने कितना कितना ऊंचा मुझे शब्द कहा है, कितनी अच्छी बात कही है। उसी समय वो आंख बंद करके प्रभु के सामने हाथ जोड़ के, हे महाराज मैं दुविधा में फंस गया, मुझे बचाओ। आंख खोलता है तो न तो वहां मृग है और न वो स्वर्गादि पदार्थ है। ततस्तम भगवान धर्मो यज्ञम याजयत स्वयं। तो भगवान स्वयं ही मृग बन करके आए और भगवान ने ही उसको इस प्रकार की स्थिति से समझा दिया कि जीवन में यज्ञ क्या चीज होता है। भगवत स्मरण से बढ़कर कभी यज्ञ होता है? अहिंसा सकलो धर्म है। किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना, इसमें सारा धर्म समाया हुआ है। यज्ञ तो यह है अहिंसा करना। ऐसी ऐसी बातें हुई। तो मनुष्य को देखो युधिष्ठिर, सदा सत्संग के अंदर रहने से उसकी बुद्धि में प्रदीप्ति रहती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण। जैसे दीपक के अंदर घी डालते रहते हैं तो वो दीपक का प्रकाश लौ जल वो जगती रहती है। यदि उसमें तेल घी कम हो गया तो दीपक की लौ बुझ जाएगी। तेल घी उसमें डालते रहो तो दीपक जगता रहेगा। ऐसे ही मनुष्य को हर समय सत्संग सुनते रहना चाहिए ताकि उसका ज्ञान दीपक है वो जगता रहे। उस ब्राह्मण ने कितना त्याग वैराग्य पूर्वक जीवन व्यतीत किया परंतु सत्संग नहीं किया तो उसका लालच उधर बढ़ गया। और पत्नी ने जब इतनी बात कही तो उसको होश आया। तो देखो पुत्र युधिष्ठिर, ये संसार के कुटुंबी लोगों का जो आपस में है रहवास होता है, साथ साथ रहते हैं, ये इसीलिए होता है। कोई डिगे तो वो उसको बचा दे, वो डिगे तो वो उसको बचा दे, ये इसके लिए होता है। उसकी पत्नी ने उसको कितना सावधान कर दिया, वो डिग गया था पर पत्नी ने सावधान कर दिया। उसके मन में ये बात बैठ गई कि हिंसा करने से बड़ी भारी हानि है, ये तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष सुख है लेकिन अंत में बहुत हिंसा हो, बहुत हानि होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मनुष्य पापात्मा क्यों हो जाता है? धर्म का आचरण फिर करे तो कैसे करे? कथम धर्म करोति वा केन निर्वेदम आदत्य। वैराग्य कैसे हो सकता है? अनादि काल से विषयों में प्रेम रहता है, विषयों में आसक्ति रहती है, वो वैराग्य कैसे हो जाए? और मोक्षम वा केन गच्छति, मोक्ष कैसे होता है? पितामह भीष्म ने कहा कि देखो मैं तुम्हें मोक्ष है, वैराग्य है, धर्म है, इसके विषय में सुनाता हूं। सबसे पहले मनुष्य को कहां कहां से उसके अंदर विकार पैदा होता है? सबसे पहले विकार पैदा होता है भूख और प्यास से। संसार में क्यों प्रवृत्त होता है? उसको भूख लगती है, भूख के लिए वो अन्न के लिए जाता है, प्यास लगती जल के लिए जाता है। वहां भूख प्यास के अंदर उसके हृदय में फिर ये मिले ऐसी फिर आगे इच्छाएं पैदा होती हैं। यथा प्राप्त अन्न से मैं भूख मिटा लूं, ऐसा यदि उसके मन में भाव हो तब तो वैराग्य हो जाए। तुमने पूछा कि कामना कैसे पैदा होती, वहां से मुझे अच्छा मिले, मैं चाहूं जैसा मिले, बस वहां से उसका ये मार्ग खुलता है। फिर किसी के साथ राग होता है, फिर द्वेष होता है, फिर ज्यों ज्यों संसार में प्रवेश करता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है। ये संसार में घुसने के, दलदल में जाने के ये इस कारण से प्रवेश होता है, ये दरवाजे हैं। लोभ मोह विभूतस्य राग द्वेषान्वितस्य च न धर्मे जायते बुद्धि। जब काम क्रोध लोभ छा जाता है तब उसकी धर्म में बुद्धि नहीं होती। जैसे बुखार आता है जिसको सर्दी लग करके, अब इन दिनों में गर्मी है लेकिन जिसको सर्दी का बुखार आएगा वो कहेगा भाई रजाई ओढ़ाओ, बड़ी गर्मी लगती है, बड़ी सर्दी लगती है, और ओढ़ाओ। एक एक रजाई, दो दो रजाई ओढ़ावे जेठ अषाढ़ के महीने में। अरे बाबा इतना तो प्रचंड सूर्य का ताप है, तुमको बाबा नहीं बहुत ठंड लग रही है। अषाढ़ में बाहर बैठने से उसको शांति मिली, हाँ ठीक सर्दी कम लग रही है, क्योंकि उसके शरीर में वो ज्वर है वो आविष्टित हो गया, घेर लिया उसने। ऐसे ही लोभ मोह आदि के अंदर जब मनुष्य फंस जाता है उसको धर्म अच्छा नहीं लगता। दिखाऊ आचरण कर लेता है, दिखाऊ व्याजेन चरते धर्मम, दिखाऊ धर्म करता है, अर्थम व्याजेन रोचते, और कपट से वो धन कमाता है। व्याजेन सिद्ध्यमानेषु धनेषु कुरुनंदन, और कपट से धन में सफलता मिल गई तो तत्रैव कुरुते बुद्धिम, वहीं पर बस वह उसके अंदर बुद्धि लगा देता है, बस यही है कैसे मिले, पैसा कैसे मिले, और पापम चिकीर्षति, फिर वो पाप करने लगता है। तो पाप के लिए, अधर्म के लिए तीन बात है, अधर्म का चिंतन करना, अधर्म की बात बोलना और अधर्म का आचरण करना, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। और धर्म कैसे होता है, धर्म ये होता है कि अच्छे पुरुषों के पास में बैठने से उसके मन में ये बात आती है कि मैं भी कैसे अच्छा बनूं, ये अच्छाई मुझ में भी आनी चाहिए। यथा कुशल धर्मा स कुशलम प्रतिपद्यते, वो कुशल व्यक्तियों के पास जाता है, उनके आचरणों को देखता है और उनको लाने की कोशिश करता है। साधु चापि सेवते, संतों का सेवन करता है, तब उसके अंदर धर्म करने की वृद्धि होती है। और उस धर्म के करने में जो उसको अर्थ आदि की प्राप्ति हो जाए तो वो उसमें संतोष रखता है। धर्मात्मा भवति एवं मित्रंच लभते शुभम, एक तो धर्म से कमाया हुआ धन और एक धर्मात्मा मित्र, ये दो यदि अपने साथ में है फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है, इस संसार में कहीं डरने की जरूरत नहीं है। धर्मात्मा मित्र होना चाहिए और धर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। स मित्र धन लाभात, ऐसे मित्र और धन के लाभ से मरने के बाद भी वो बड़ा आनंदित रहता है। उसको चाहे कितने ही अच्छे पदार्थ मिले या न मिले, उसके पास जो धर्मात्मा मित्र है बस, और धर्म से कमाया हुआ धन है, दिखने में वो चाहे थोड़ा ही हो, उसके लिए बड़ा आनंद देने वाला और संतोष देने वाला होता है। और फिर वह ज्ञान दृष्टि से देखता है, विवेक दृष्टि से देखता है, बुद्धि रूप नेत्र उसके खुले हुए रहते हैं, उसको धर्म के अनुष्ठान में अंदर से आनंदानुभूति होती है, इसलिए वो धर्म को नहीं छोड़ता है। न च धर्मम विमुंचति, संपूर्ण संसार को नाशवान समझता है और धर्म को अपना साथी समझता है। जब संसार को नाशवान समझता है अंदर से भीतर से, तो उसको निर्वेद होता है, वैराग्य होता है। उसके मन में ये बार बार विचार आ रहे किसके लिए पाप कर रहे हैं, थोड़े से जीने के लिए पाप को हम मित्र बनाएंगे, ऐसा उसके मन में घृणा हो जाती है। ऐसे करने से फिर वो आगे चला जाता है, आगे बढ़ता ही रहता है और मोक्ष की तरफ बढ़ता है। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो कर्णे घटस्य या बुद्धिर घटोत्पत्तौ नशा मता, जिस प्रकार से घड़े बनाने की जो कला है आदमी के अंदर, कुमार के अंदर घड़ा बनाने की कला है, वो घड़ा बन गया, घड़ा बन जाने के बाद फिर उसको उस घड़े के बनाने की कला का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जब आदमी का चित्त पवित्र हो जाता है तो फिर उसको अलग से कोई यज्ञ आदि करने की जरूरत नहीं रहती है। ये यज्ञ वगैरह करने की और दूसरे उपायों को करने की तो केवल चित्त को पवित्र करने के लिए ही है कि पवित्र काम करो ताकि चित्त शुद्ध हो। लेकिन जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसका फिर इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। जो समुद्र की तरफ जाता है वो पूर्व समुद्र की तरफ, वो पश्चिम दिशा को पकड़ ले तो नहीं जा सकता। ऐसे ही जो आदमी मोक्ष का मार्ग पकड़ चुका है वो संसार में नहीं जा सकता है। मोक्ष के मार्ग के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पुत्र क्षमया क्रोधम उच्छिंद्यात्, बात बात में क्रोध आता हो तो क्षमा के द्वारा क्रोध को शांत करो। उफनता हुआ दूध होता है उसमें ठंडे पानी का छांटा डालते ही दूध एकदम बैठ जाता है। इसी प्रकार से क्रोध को शांत करना हो तो क्षमा से शांत करो। कामम संकल्प वर्जनात्, और कामनाओं को नष्ट करना है तो अपने अंदर संकल्पों का नाश करो। संकल्प क्या होता है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका नाम संकल्प है। ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, ऐसा नहीं हो तो बढ़िया है, तो इससे कामना का नाश नहीं होता। वो ये तो हो गया, अपने क्या मतलब है, अपने तो चाहे से होने वाला है नहीं। और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान ध्यान आदि सात्विक गुणों का सेवन करने से निद्रा आलस्य प्रमाद इनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब मनुष्य में प्रमाद नहीं रहता तो फिर वो भयभीत भी नहीं होता। और श्वासम क्षेत्रज्ञ शीलनात्, और आत्मचिंतन करने से श्वास की रक्षा होती है, अर्थात प्राणायाम उससे बड़ा अच्छा यही प्राणायाम है। एक तो प्राणायाम होता है ये जो क्रिया होती है, एक आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन के समय ये श्वास है बहुत धीमी गति से चलते हैं, उस समय में ये श्वास धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से चलने पर प्राण बचे रहते हैं। संसार का चिंतन करने से श्वास जल्दी चलते हैं, तो आत्मचिंतन करने वाले के शरीर में बीमारी बहुत कम होती है, और हो भी जाए तो वो भयभीत नहीं होता। धैर्य के द्वारा राग और द्वेष का त्याग कर सकता है। और शास्त्र का जानकार व्यक्ति शास्त्रों का बार बार अभ्यास करता है तो निद्रा मोह भ्रम इन सब का त्याग कर सकता है। हित जीर्ण मिताशनात्, हितकारक और सुपाच्य और अल्प भोजन करने से शरीर के कई उपद्रवों को रोगों को आदमी जीत सकता है। संतोष तो एक इतना बड़ा शस्त्र है युधिष्ठिर, उससे लोभ और मोह फटक ही नहीं पाते हैं। अनुक्रोशाद अधर्मंच, दया होती है, दया से आदमी अधर्म से विमुख हो जाता है। दया हृदय में रहेगी तो पाप नहीं करेगा। और विद्वान आदमी, समझदार आदमी संसार को अनित्य समझेगा तो कुटुंब में मुंह नहीं रखेगा कि भाई कितने दिन का है ये? अनित्यत्वेन च स्नेहम क्षुधाम योगेन पंडित है, योगाभ्यास के द्वारा वो क्षुधा को भूख को जीत लेगा। यच्छेद वांग मनसी बुद्ध्याताम यच्छेद ज्ञान चक्षुषा, मन और वाणी को इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा जीते। अब यही यहां है, आजकल क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां विषय में दौड़ती है तो साहब इंद्रियां वश में नहीं रहती। अरे इंद्रियों से ऊपर वाले को वश में करो, इंद्रियों से ऊपर वाला मन है, मन को हम वश में करें, मन वश में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि बुद्धि वश में नहीं है, बुद्धि के अंदर विषयों की रुचि है और वही रुचि मन के बुद्धि के द्वारा मन में और इंद्रियों में प्रकट होती है। बुद्धि के अंदर जो विषयों की रुचि होती है वो सूक्ष्म होती है और इंद्रियों में और मन में वो साफ दिखती है कि हमारी विषयों में रुचि है। बुद्धि के अंदर यदि विषयों से वैराग्य हो जाए तो फिर मन और इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। इसलिए लिखा है कि ताम यच्छेत ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्र के द्वारा बुद्धि को वश में करो। ज्ञानम आत्मावबोधेन यच्छेद आत्मानम आत्मना, अपने आप के अंदर स्थित हो जाओगे तो सब प्रकार से तुम संसार के दोषों से रहित हो जाओगे। काम क्रोध लोभ भय स्वप्न सबका त्याग हो जाएगा। ध्यान अध्ययन ज्ञान दान सत्य सरलता ये सब योग के साधन हैं। जब पाप एकदम धुल जाता है, काम क्रोध आदि को जीत लेता है तो वो परब्रह्म परमात्मा के लोक में स्थित होता है। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, एक बार एक बूढ़े संत थे देवल ऋषि, उनके पास में नारद जी गए और नारद जी ने उनसे यही बात पूछी कि महाराज जी, मोक्ष ये संसार किससे पैदा होता है, संसार का पालन कौन करता है और संसार नष्ट होता है तो ये किसमें समाता है? तो वे देवल ऋषि कहने लगे कि देखो नारद, ये जो संसार बाहर से अभी दिखता है ना, ये बाहर से दिखता है तो ऐसा लगता है कि यही संसार है। इसकी सूक्ष्मता पर विचार करो, जैसे आकाश है तो ये आकाश आकाश तन्मात्र से पैदा हुआ है, वायु तन्मात्र से पैदा हुई है, पांच महाभूतों का जो सूक्ष्मतम अंश है वो है खास कारण, और वो पैदा होता है भगवान से परमात्मा से। अब जीव है अपने सामने आने वाले विषयों को देखकर और वो चक्कर खा जाता है। इंद्रियाणि न बुध्यन्ते क्षेत्रज्ञ स्थैस्तु बुध्यते, वो इंद्रियों में मन में इतना रम जाता है कि इनके परे भी कोई चीज है वो अपने आप को भूल जाता है और इंद्रियों के साथ मिल करके और सुखी दुखी होता रहता है। इसलिए मनुष्य स्वयं ही अपने दुख को पैदा करता है। इसलिए मनुष्य पर जिम्मेवारी है कि वो अपने दुख से छुटकारा प्राप्त करे और मोक्ष को प्राप्त हो। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि महाराज, मैंने तो आपके उपदेश से यही सीखा है कि ये जो तृष्णा होती है ना, राज्य की तृष्णा हो चाहे धन की तृष्णा हो चाहे भोगों की तृष्णा हो, ये तृष्णा से ही हम लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया, महाभारत का युद्ध हुआ। और आप जैसे हमारे दादाजी, आपके ऊपर भी हमने बाणों का प्रहार किया, आप सरसैया पर पड़े हैं, बार बार विचार आता है कि ये तृष्णा कैसे खत्म हो, क्योंकि तृष्णा के कारण से हमने देखो सब कुछ खो दिया। तो हमारी जैसी गलती दूसरा न करे, इसलिए आप उपदेश दीजिए कि तृष्णा का दमन कैसे किया जाए। पितामह भीष्म ने हंसते हुए कहा कि पुत्र, ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध ये तुम्हारे और हमारी इच्छा से नहीं हुआ है। बोलते बोलते कृष्ण की तरफ देखे, बोले नहीं, कृष्ण की तरफ देख करके हंसे। भगवान श्री कृष्ण ने नीचा सिर कर लिया। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि ये इनकी इच्छा से हुआ है, तो कहने लगे, महाराज मैं तो तृष्णा का अंत कैसे होता है ये पूछता हूं। तो पितामह ने कहा कि देखो, एक बार विदेह राज जनक के पास मांडव्य ऋषि गए थे। मांडव्य ऋषि ने जाते ही पूछा, महाराज जनक जी, इतना बड़ा विशाल वैभव, इतना बड़ा भूमंडल का राज्य, इसमें आप कैसे रहते हो? देखो, आपकी और हमारी खुलकर बात होती है, खुलकर बात बोलना। जनक जी कहते हैं, महाराज यदि कोई मेरे राज्य पर अभी शत्रु आए और वो कहे कि भाई जनक जी, तुमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुमको तो वैराग्य हो गया, तुम राज्य लेकर क्या करोगे, इसलिए राज्य तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं युद्ध करूंगा, तुम्हारा शस्त्र लेकर युद्ध कर उसको परास्त करूंगा, क्यों दे दूं तेरे को राज्य, हमारा राज्य है। परंतु आप ऋषि मुझे पूछते हैं कि इस राज्य को तुमने प्राप्त किया है तो तुम्हारी अंदर में क्या स्थिति है? महाराज यदि अभी इसमें आग लग जाए, मेरे मन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खूब आराम से रह सकता हूं, मेरे दिल में कोई असर नहीं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचन, सारी मिथिला नगरी जल जाए तो मेरा कुछ नहीं जलता है महाराज, मेरा क्या जलेगा, मैं इससे बहुत दूर हूं, बहुत अलग हूं। क्योंकि जितनी समृद्धियां हैं संसार की, उन्नतियां हैं, ऐश्वर्य है, ये सब ज्ञानी पुरुष के लिए तो दुखदाई है। जैसे रास्ते चलते कंकर पत्थर कांच आते हो, शूल आते हो, तो आदमी देखता है, कहां से कंकर आ गया, ये शूल आ गए, कांटे आ गए, डरता है वो। ऐसे विवेकवान पुरुष संसार के भोगों को दुख समझता है। और जिस प्रकार से गाय का बछड़ा जन्मता है, उस समय उसके सींग बहुत थोड़े होते हैं, नहीं के बराबर ये या, और ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है त्यों त्यों उसके सींग निकलते हैं। ऐसे ही ज्यों ज्यों आदमी के पास संपत्ति बढ़ती है, त्यों त्यों दुख के भी सींग निकलते हैं, दुख बढ़ते हैं। इसलिए महाराज, थोड़े से भी धन के साथ ममता करूंगा तो वो ममता बढ़ती जाएगी। मैं किंचन मात्र भी ममता नहीं करता हूं, अतएव मैं यहां रहता हुआ भी इन भोगों में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो फिर कोई काम क्रोध लोभ आदि आ ही नहीं सकता। तृष्णा एक ऐसी बीमारी है ऋषिवर कि मनुष्य का शरीर है वो जीर्ण हो जाएगा, एकदम गलित पलित हो जाएगा। एक सज्जन को देखा भाई, मृत्यु से एक दिन पहले उनके पास एक व्यक्ति मिलने गया, ये क्या हालचाल है कैसे? अरे भाई, हालचाल तो देख ठीक ही है, तो है जैसा ही है, बीमार तो पड़ा ही है, ठीक है। बहुत कष्ट से बोला, अरे मेरा थोड़ा सा गवर्नमेंट में 3 लाख रुपए का एक चेक है, वो तो निकलवा दे। उस आदमी पर धक्का लगाए, जिस आदमी के पास कितने ही करोड़ रुपया है, कितने ही करोड़, और मृत्यु अवस्था है, उसके शरीर के अंदर पानी दिया जाता है, डायलिसिस कराया जाता है, तब जाकर के उसके शरीर में थोड़ी फुर्ती सी आती है, बोलने लगता है। 10,000 रुपए का तो रोज उसके पानी लगता है, एक विचित्र पानी होता है वो, और वो कहता है 3 लाख रुपए का मेरा चेक गवर्नमेंट में अटका हुआ है, तू ला सकता है तू जरा ले आना। वो धक्का लगा मेरे की, अरे ये वासनाएं आदमी के अंदर कितनी सूक्ष्म होती हैं। बराबर सत्संग न करे, बराबर सावधान न रहे तो कब आकर के इसको घेर लेती है। और दूसरे दिन वो आदमी मर ही गया, दूसरे दिन वो मर गया, दूसरे दिन तो क्या मरा, रात को ही मर गया था। बिल्कुल सच्ची घटना है ये, जिसको कहा उसको भी मैं जानता हूं और जिसने कहा वो भी मुझे पता है, ऐसी दशा है। तो शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण होता है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन न जीर्यति जीर्यत है। शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर भी ये तृष्णा जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। योसु प्राणांतको रोग है, तृष्णा एक प्राणांतक रोग है। ये प्राण प्राण चले जावे तब तक ये रोग रहता है। अरे और चीजें तो प्राण के साथ खत्म होगी, बड़ी भारी बीमारी है शरीर में, कैंसर हो गया, कीटाणु फैल गई, सब शरीर फैल हो गया, मरे तो मरते ही वो बीमारी भी खत्म, लेकिन तृष्णा की बीमारी तो साथ में जाती है। इसलिए जो तृष्णा का त्याग कर देता है मांडव्य ऋषिवर, वो व्यक्ति संसार में बहुत सुख से रहता है, उसका चरित्र बड़ा निर्मल चंद्रमा के समान होता है, चंद्र शुद्ध मनामयम। ये बात सुन करके मांडव्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हमने तो ये आपका ये चरित्र सुना, सुनने के लिए आए थे, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज आदमी चेत क्यों नहीं करते हैं, जब मौत रोज आती है, प्रतिक्षण आ रही है, आ क्या रही, वो मौत में ही बैठा है, फिर भी आदमी भयभीत नहीं हो रहा है, कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करता है, इसका कारण क्या है? पितामह ने कहा अज्ञान है, अज्ञान मोह। जैसे गहरी नींद में आदमी सोया रहता है, उसका मुंह खुला है, ऐसा मुंह खुला है, अब उस खुले मुंह में मक्खी आती तो पता नहीं, कोई बैठता तो पता नहीं, मुंह में पड़ा हुआ है। ऐसे संसार के मुंह में पड़े हुए आदमी को कुछ होश नहीं, करे मैं मृत्यु के अंदर पड़ा हुआ हूं। नींद को, नींद वाले को पता है क्या कि मैं नींद में हूं? जिसको नींद आई हुई रहती है उसको पता नहीं कि मैं नींद में हूं, जगने के बाद कि हाँ नींद में हूं। कहते हैं देखो बेटा युधिष्ठिर, एक पुत्र था वो अपने पिताजी के पास गया, पुत्र था वो बचपन से ही स्वाध्याय के अंदर लगा रहने वाला, अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी इस संसार में कौन से धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, आप मेरे पिता हैं, मुझे शिक्षित कीजिए। पिताजी ने कहा देखो बेटा तुम अभी ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करो, फिर उसके बाद तुम गृहस्थ में चले जाना, गृहस्थ में जब तुम्हारे संतान हो जाएगी और तुम गृहस्थ का पालन कर लोगे तब फिर अग्नि आदि के द्वारा यज्ञ करना, और फिर अग्नि आदि का भी त्याग कर वन में चले जाना, अथवा गृहस्थ में रहते हुए भी वानप्रस्थ का पालन करना, और 75 वर्ष के बाद फिर संन्यास आश्रम में चले जाना। पुत्र कहने लगा पिताजी मैं तो चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ हूं कि रोज मेरी पिटाई हो रही है, अमोघासु पतंतीशु, ऐसी ऐसी अमोघ पिटाइयां मेरी हो रही हैं, डंडे बरस रहे हैं। पिताजी आप कहते हो कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये कब आएंगे? चारों तरफ से मैं एक आफत में तो घिरा हुआ हूं, डंडे और पड़ रहे हैं महाराज। जैसे कोई आदमी हो वो चारों तरफ से तो लोगों से घिरा हुआ डंडा मार रहे है और आफत है ही उसके ऊपर, और गया अब तो उस मार्ग में जा, उधर जा, वो जावे कहां, यहां से निकले तब जावे ना। पिता ने कहा बेटा मुझे डराता क्यों है, कौन सी तेरे पर आफत है, कहां तेरे डंडे पड़ रहे हैं? पुत्र ने कहा पिताजी ये मृत्यु है ना, इसने तो चारों तरफ से हमको घेर रखा है, बताओ कोई ऐसा समय है कि जिसमें मृत्यु न होती हो? अहोरात्रा पतंती में, और दिन और रात है ये डंडा बरस रहे हैं हमारे पर, ये दिन हो गया ये रात हो गई, अब कल रक्षाबंधन था, आज भादवावधि है, कमर कल भादवावधि दूर है, फिर जन्माष्टमी है, ये क्या है महाराज? ये मीठे मीठे डंडे ही तो पड़ते हैं, मृत्यु ने घेर लिया और डंडा मारना चालू कर दिया। अब आप कहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, इतना करने का समय कहाँ है? सुअम कथम प्रतीक्षिष्य, मैं किसकी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा करूं? मैं तो घिरा हुआ हूं आफत में। रात्र्याम रात्र्याम व्यतीतायाम, एक एक रात बीतती है तो पिताजी मेरा जीवन का क्षण जा रहा है, इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि कल का जो काम करना है वो आज कर ले। मैं स्व कार्यम अद्य कुर्वीत है, और पूर्वान्ने चा परान्निकम, और जो दोपहर में काम करना है वो सुबह कर ले, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि भाई इसका बिचारे का काम अधूरा है कि पूरा है, क्या पता मृत्यु कब आ जाए। सारे काम या अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, मृत्यु आ जाती है। एक आदमी ने कहा भाई देखो आज इतना मकान का काम हो गया, ये हो गया, कल आएंगे और कल सुबह तुम जाकर कह रहे ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, कल से फिर ये काम चालू करना है, सब व्यवस्था की, रात को ही वो मर गया। तो मनुष्य को मरने से पहले पहले सावधान होना चाहिए पिताजी, मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि मृत्यु के समय भी प्रसन्नता रहे और मृत्यु के बाद भी प्रसन्नता रहे। ये यहां जो परिवार में मोह रहता है पुत्र में, स्त्री में, धनादि पदार्थों में, और वो इन्हीं के अंदर ही लात दिन खटपट में ही लगा रहता है और इन्हीं में ही संतुष्ट रहता है और इन्हीं में ही आसक्त रहता है, और वो भूल जाता है कि मृत्यु हमको ले जा रही है, मृत्यु के अंदर हम जा रहे हैं, इस बात को भूल जाता है तो नाना प्रकार का अनर्थ करता है। इसलिए महाराज मृत्यु जरा और व्याधि ये ऐसी चीजें हैं, इनसे आदमी को हरदम डरना चाहिए, क्या पता कब बीमारी लग जाए, क्या पता कब बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापा में तो कुछ होगा नहीं और मृत्यु तो हरदम आती रहती है, इसलिए मनुष्य क्या समझ करके यहां प्रसन्नता में रह रहा है, समझ में नहीं आया है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, जहां मृत्यु जाती नहीं है वहां स्थित हो जाए। आत्मनि एव आत्मना जाते हैं, असल में तो वो आत्मा से ही पैदा हुआ है, आत्मा में ही रहता है, और आत्मा में ही रहने से वो आत्मा स्वरूप है, आत्मनिष्ठ। इसलिए इस विद्या के समान कोई विद्या नहीं है, अपने हृदय रूपी गुफा में बैठकर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। पिताजी आज आपके पिता कहाँ हैं, आपके दादाजी कहाँ हैं, आपके परदादाजी कहाँ हैं, इसका आपको कुछ पता है क्या? पिता महास्ते क्वगता पिता च, इसलिए ये सब भाई बंधु स्त्री पुत्र छूट जाएंगे पिताजी, मृत्यु से डरना चाहिए। अब बोलो क्या बोलते हो? पिता ने कहा बेटा इधर आओ, पास में आया, छाती से लगाया कि बेटा कहने में तो तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन तुम्हारी बात इतनी सत्य है, इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूं, और तुमने जो कहा वही बात है कि मृत्यु से घिरे हुए आदमी को सदा भगवान से जो है सदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा महाराज कैसा आदमी है जो परब्रह्म परमात्मा के स्थान में जाता है? कहने लगे देखो भाई वो परमात्मा का स्थान ऐसा है कोई नेत्र से नहीं देखा जाता, बुद्धि से भी नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं देखा जाता, उसके लिए तो मनुष्य को जो है हृदय से सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। कि महाराज सन्यासी कैसे होते हैं? सन्यासी अपना घर बार छोड़ देते हैं, परंतु इतने में उनका सन्यास पूरा नहीं होता है, संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, सबका ठीक ढंग से त्याग कर दे। कोई आदमी चाहे कितनी ही उसके लिए निंदा करे, अतिवादां स्थिति क्षेत्र ना भी मन्ये तक कंचन है, और कभी भी अपनी बड़ाई न करे, चुपचाप कटु वचनों को सहे। और सहने का अर्थ यह नहीं है कि वो ऊपर से कुछ नहीं बोले लेकिन अंदर से अंदर में क्रोध की वृत्ति जगने ही न दे। क्रुद्यमान है प्रियम ब्रुयात, आकृष्ट है कुशलम वदेत। और कोई आदमी झिड़क करके बोलता है, तिरस्कार के साथ बोलता है, तो मुस्कुरा करके प्रेम से बोले, वो ये भी न कहे कि आप झिड़कते क्यों हैं, ऐसा भी न कहे, कुछ नहीं कहे। कभी गांव में या जन समुदाय में रहे तो कभी भी किसी के पंचायती के अंदर न पड़े। कोई उसके ऊपर धूल उछालता है, कोई उसका सब प्रकार से अपमान करता है, तो हृदय को कोमल बना करके रखे। सर्दी गर्मी से बचने के लिए प्राकृतिक जो उपाय है उन्हीं का सहारा लेवे। वो जो है सूने घर में रह सकता है, वृक्ष के जड़ों में रह सकता है, जमीन खोद करके अंदर सर्दी में रह सकता है, परंतु संसार की वस्तुओं का माने ये घर आदि का उपयोग न करें। कोई लोग उसकी कितनी प्रशंसा करें तो भी उसको उस प्रशंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए। जब आदमी के घर में चूल्हे की धुएं बंद हो जाती हों और अंगारों की गर्मी शांत हो जाती हों और सब लोग भोजन कर लेते हों, उसके बाद उसको भोजन करने भोजन के लिए भिक्षा किया जाना चाहिए। कोई आदमी कहे कि महाराज हमारे यहाँ भोजन करो, तो उसके वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, अनिमंत्रित भोजन लेना चाहिए। किसी को कहे नहीं और किसी को कहे कि साहब देखो अब आपने कह दिया, अब हम आज आपके यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा जो अन्न होता है वो सन्यासी स्वीकार करता है। अब भिक्षा के अंदर उसको कोई कैसा भी दे दे, जलावा दे दे, अध पका देवे, तो अभी न अन्न दोषान निंदित है, अन्न के अंदर कोई कमी देखकर दोष देखकर उसकी निंदा न करे। और कभी खूब बढ़िया माल मिल जाए तो उसकी कभी किसी प्रकार से जो है प्रशंसा न करे। शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल जो मिले उसके लिए कोई निंदा दोष न करे। बस मध्यस्थ ही वो तिष्ठित है, वो केवल संसार में मध्यस्थ होकर के रहे, अर्थात सुख और दुख के बीच में रहे, अपने सब वेगों को वो शांत करे। दूसरों की हुई निंदा होती है उसको हृदय में कोई स्थान न दे। विज्ञान विजानता मोक्ष एष समस्याद अविजानता, ज्ञानी पुरुष होता है वही आदमी इस सन्यास धर्म का निर्वाह कर सकता है। अज्ञानी आदमी ऊपर ऊपर से तो कर लेगा, भीतर में उसकी साधना नहीं बनेगी, उसको ये सन्यास धर्म बहुत कठोर मालूम देगा और उसके लिए परिश्रम हो जाएगा। इसलिए सन्यास के लिए अंदर से विवेक की बड़ी आवश्यकता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम लोग बड़े धन्य हो गए महाराज, क्योंकि हम लोगों से बढ़कर कौन धन्य है, इतनी बढ़िया बढ़िया आप हमको बातें सुनाते हो। परंतु महाराज हम लोग दुखी भी कितने हैं कि इतना बड़ा हमारा परिवार, आज धरती पर हमारे जैसा कोई वंश नहीं था, उसकी क्या दशा हुई। ऐसे हमारे अंदर कष्ट भी तो है महाराज, क्या ये जो सन्यास धर्म बताए, क्या ये सन्यास हम भी ले सकते हैं क्या। पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं, तुमको ये सन्यास लेना उचित नहीं है। तुम लोगों ने मान लिया कि राज्य है ये हमारे आत्म कल्याण में बाधक है, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर वृत्रासुर की सब कथा सुनाई उन्होंने कि देखो वृत्रासुर था, वृत्रासुर एक बार जो है बड़ी भारी तपस्या किए और फिर इंद्र के द्वारा पराजित हो गया। पराजित हो गया तो इंद्र जो है वो उसको आकर के शुक्राचार्य जी ने, देवताओं के गुरु ने आकर के कहा, अरे अरे ओ शुक्राचार्य, अरे ओ वृत्रासुर, तू इतना बड़ा बलवान, तेरे समान कोई नहीं, और तेरा सारा राज्य वगैरह इंद्र ने छीन लिया, देवताओं ने तुझे परास्त कर दिया, तेरे मन में कोई अंतर ही नहीं आया, मन में तेरे कोई विचार ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? वृत्रासुर ने कहा, महाराज मैं क्यों शोक करूं, मैं नाने न जाने कितनी कितनी योनियों में भटक करके आया हूं, कितनी बार देवता बना हूं, कितनी बार मैं कीड़ा मकोड़ा बना हूं, कितनी बार पशु पक्षी बना हूं, कितने सुख आए कितने दुख आए, एक अभी मेरा राज्य चला गया, इतने में मैं दुख करने लग जाऊं, ये कोई खास बात थोड़े ही हमारे लिए, कई बार जीतते हैं कई बार हारते, मेरी कैसी सिद्धि प्राप्त की, आकाश के अंदर में चला जाता और आग बिखेरता तो गर्मी से वहां सब देवता भग जाते, ज्वालामाल परिक्षिप्तो वहियायस चरस तथा अजेयस सर्वभूतानाम, सब प्राणियों से मैं अजेय था, राज्य हो गया, ये सब वैकुंठ भगवान विष्णु सनातन परब्रह्म परमात्मा की लीला है, वो हमको जिस रूप में रखते हैं हमको उसी रूप में रहना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे हमने तो कभी तुमको विष्णु की बात बताई नहीं थी, तुम ये विष्णु की बात कैसे बोलते हो रे, तुम विष्णु की बात कैसे बोलते हो, तुमने विष्णु की भक्ति कब की, देख के लोग तो कभी भक्ति विष्णु की करते नहीं है। तो वृत्रासुर ने पूछा कि यदि ईश्वर नाम की चीज नहीं हो, विष्णु नाम का कोई न हो, तो देवताओं में बल कहां से आता है, गुरुजी आप में ज्ञान कहां से आता है, मेरे में इतनी शक्ति कहां से आई है, ये सब चराचर जगत किससे बना है, बताओ। तो शुक्राचार्य जी बिचारे संशय में पड़ गए, इतने में ही सनकादि ऋषि वहां आ गए। सनकादि ऋषि आए तो शुक्राचार्य जी और ये वृत्रासुर ये दोनों सनकादि ऋषियों को ऊंचे आसन पर बैठा कर उनसे ये सब बात पूछी कि महाराज ये क्या चीज है, तब उन्होंने भगवान विष्णु की बड़ी विचित्र ढंग से महिमा बताई, भगवान की महिमा बताई, और फिर उसको सुनकर के शुक्राचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से ये चरित्र चला। अब उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि हम लोगों को मृत्यु आदि का भय न रहे ऐसा कोई उपदेश दे हो, तो वो प्रश्न का उत्तर आगे बताते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
narayana
shriman narayana